मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि हमारा सारा इतिहास वास्तव में ऐसे ही उदाहरणों से भरा हुआ है, अलग जीवन मूल्यों से हमारा इतिहास भरा हुआ है। कितने ही उदाहरण है, उदाहरण के लिए एक बार का प्रसंग ऐसा बताते कि पांडव वनवास में थे, माता कुंती के हाथ से कुछ अच्छा काम हुआ होगा, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर मांग लो। अब वास्तव में उनके सामने पहला सवाल तो यही था कि राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है, तो सीधे वरदान मांग लेती। लेकिन जो उन्होंने मांगा वो बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि एक ही वर दीजिए कि विपदा संतु न शश्वत यासु संकीर्तते हरिः, हम हमारे ऊपर हमेशा आपत्तियां रहे, विपत्ति रहे, ताकि तुम्हारा स्मरण हमको होना चाहिए। जब राज्य प्राप्त करने के चक्कर में सब पड़े हुए हैं, उस समय इस तरह का वरदान मांगना, और फिर जब लड़ाई हो गई, जीत ली, राज्य प्राप्त हुआ, तो उस समय की घटना बताते कि धृतराष्ट्र वनवास जाने के लिए निकले। इन्होंने कहा पांडवों ने, लेकिन उन्होंने माना नहीं, कहा कि अब मैं भी वनवास में जाऊंगा। तो उनके साथ जाने के लिए कुंती भी तैयार हो गई। तो वो पांडवों ने कहा कि मां, तुमने आग्रह किया इसलिए हमने यह लड़ाई लड़ी, अब राज्य प्राप्त होने के पश्चात तुम जा रही हो। तो उसने कहा कि मैंने राज्य प्राप्त करने का तुमको आदेश दिया इसलिए नहीं कि हम लोग राज्य को भोग कर सके, इसलिए कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यह कर्तव्य है अन्याय का निराकरण करना, तो धर्म के पालन के लिए राज्य प्राप्ति आवश्यक थी, वह मैंने तुमको बताया। अब धर्म का आदेश मुझे है कि जब मेरे देवर जंगल जाने के लिए निकले तो उनकी सेवा में मैं भी वनवास का ही स्वीकार करूं, यह धर्म मुझे मेरा बताता है, तो इसलिए मैं अभी वनवास में जा रही हूं। माने सारा करते हुए राज्य प्राप्त करने के बाद फिर जंगल में जाने की बात सोचना एक आदर्शवादी जीवन अमूल्य उनके जीवन में हमें दिखाई देता है। पुराने इतिहास में ऐसे तो कई उदाहरण है, भरत का है, चाणक्य का है, कितने ही उदाहरण है, किंतु कोई सोचेगा कि ये केवल पुराने उदाहरण है, नए इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं हमारे इतिहास के, ऐसा नहीं। यह जो नेतृत्व स्वयं होकर छोड़ने की बात है, अभी अभी के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी मिलती, लोकमान्य तिलक जी 1916 के पश्चात एक तरह से संपूर्ण देश के नेता थे, सब लोग उन्हीं को मानते थे, और उस समय महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान में आए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो सत्याग्रह किया था उसकी बड़ी चर्चा थी, और शांतिपूर्ण असहयोग का जो उनका प्रयोग है वह प्रयोग कांग्रेस ने भी करके देखना चाहिए, यह एक विचार कांग्रेस के लोगों के मन में आ रहा था। तिलक जी ने जब देखा कि शायद कांग्रेस इस तरह से आंदोलन छेड़ने का विचार स्वीकार कर सकती है, तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि भाई ठीक है, लोग मेरा मानते हैं, मैं नेता हूं, किंतु यदि यह निर्णय हुआ कि आपके ढंग से आंदोलन चलाना है तो उसका जो तंत्र है वह मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, तो उसका नेतृत्व आपने करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। यह बात ठीक है, तो उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, किंतु यदि वो मृत्यु न होती तो एक सिपाही के नाते वो गांधी जी के नेतृत्व में खड़े होने की मानसिक तैयारी रखते थे, यह इस पर से स्पष्ट होता है। गांधी जी के भी जीवन का ऐसा उदाहरण आता है जो आज के राजनीतिक वायुमंडल के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही उद्बोधक। 1924 में बेलगांव कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता की। जीवन में कई बार यह बड़ा सम्मान उन्होंने लिया और उस समय चर्चा चल रही थी कि काउंसिल में जाना या न जाना। गांधी जी इस मत के थे कि नहीं जाना चाहिए और जो इस मत के थे कि जाना चाहिए, उन्होंने एक अलग कांग्रेस के अंतर्गत गुट तैयार किया था जिसका नाम था स्वराज्य, स्वराज्य पार्टी। उसका नेतृत्व चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि कर रहे थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जब मीटिंग हुई तो उस समय गांधी जी का विचार यह बहुमत में था। 6 महीने तक गांधी जी ने जब दौरा किया, लोगों के साथ बातचीत की, तो उनको दिखाई दिया कि यद्यपि कांग्रेस सेशन के समय उनका विचार बहुमत में था, तो भी धीरे धीरे लोगों के वृत्ति में परिवर्तन आ रहा है और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि काउंसिल में एक बार जाकर देखना ही चाहिए, उसका भी उपयोग क्या हो सकता है। तो AICC के लोगों के मन में यह विचार परिवर्तन आ रहा है, यह बात और किसी को मालूम नहीं थी, क्योंकि अलग अलग लोग अपने अपने स्थान पर विचार कर रहे थे। स्वराज्य पार्टी के लोगों को भी इस बात का पता नहीं था, लेकिन गांधी जी को पता चला। यह पता चलने के पश्चात उनको लगा कि मेरा कुछ नैतिक कर्तव्य है, तो जुलाई महीने में उन्होंने स्वराज्य पार्टी के उस समय के जो नेता थे, क्योंकि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो चुकी थी, मोतीलाल जी नेहरू, उनको एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि शायद आप जानते नहीं हो कि AICC में उस समय तो मेरा बहुमत था, अब मेरा बहुमत नहीं रहा, अब वह बहुमत आपके ही विचार को पसंद कर रहा है और इस दृष्टि से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, आप कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार कर लीजिए। इस तरह का एक पत्र लिखा। माने जनता को भी मालूम नहीं कि विचार परिवर्तन हुआ, स्वराज्य पार्टी और मोतीलाल जी को भी पता नहीं कि वास्तव में उनका बहुमत हो रहा है, केवल गांधी जी को ही पता था। किंतु पता चलने के पश्चात स्वयं होकर और उन दिनों में कांग्रेस का अध्यक्ष पद सार्वजनिक जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता था जितनी प्राइम मिनिस्टरशिप आज मानी जाती है, इतना महत्वपूर्ण पद स्वयं छोड़ना, इसकी कल्पना आज के जीवन में करना कुछ कठिन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि आदर्शवादी जीवन मूल्य जिनके हैं वो अलग ढंग से सोचते हैं और केवल व्यक्तिवादी, पर्सनल एम्बिशन, मेरा बड़प्पन, मेरा गौरव, मेरा नाम, ऐसा जिनका विचार है वो कुछ अलग ढंग से चलते हैं, ऐसा दिखाई देता है। हम लोग भारतीय मजदूर संघ का सामूहिक नेतृत्व इस नाते जब यहां इकट्ठा आए, तो जीवन मूल्य हमारे क्या होने चाहिए और उसके मुताबिक उस हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, सोचने का ढंग क्या होना चाहिए, इसके बारे में बारीकी से सोचे यह आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यहां जो हम लोग बैठे हैं, हम सब मिलकर ही मजदूर क्षेत्र का सामूहिक नेतृत्व करने वाले, हमारे नेतृत्व की जो क्वालिटी रहेगी उसका असर हमारे क्षेत्र पर और देश पर होने वाला है। तो हमारे सोचने का ढंग क्या रहे, विचार का ढंग क्या रहे, भावना हमारी कैसी रहे, इसका बहुत महत्व है। और जब हम सोचते हैं कि नेतृत्व, तो आज तो राजनीतिक क्षेत्र में नेताजी यह बड़ा प्रचलित शब्द हो गया, कई लोगों को नेताजी यह उपाधि प्राप्त हुई है। सुभाष चंद्र बोस को यह उपाधि प्राप्त करने के लिए आत्म बलिदान करना पड़ा, आज वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप नेताजी बन सकते हैं। और जब नेताजी बन सकते हैं तो नेता का व्यवहार कैसा रहना चाहिए, यह भी एक पैटर्न आज तय हुआ है। हर एक नेता बनने की भी कोशिश कर रहा, और नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह पैटर्न भी तय हो चुका है। नेता माने वो है जो कमांड करता है, लोगों को आदेश देता है, स्वयं काम नहीं करेगा, लोगों को आदेश देगा। मीटिंग है, दरिया उठाने का काम नहीं करेगा, भाषण देने के लिए आएगा। एक पैटर्न लोगों का तय हुआ है। बाहर निकलेगा सीना तान कर गर्दन ऊंची करते हुए, किसी ने प्रणाम नहीं किया तो उसको पूरा प्रणाम नहीं करेगा, जरा ऐसा मान गर्दन झुकाकर प्रणाम का स्वीकार करेगा, माने मैं हूं कुछ, मैं कम नहीं हूं, मैं तुम्हारा नेता हूं। यह कॉन्शियसनेस लेकर चलने वाले नेताजियों का, नेताजियों की बड़ी फसल आज हिंदुस्तान में आ रही है। नए नए लोग भी जो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, उनके ऊपर यह संस्कार नहीं है कि देश की सेवा करनी है, उनके ऊपर यही संस्कार है कि ये जो बुढ़े लोग हैं उनके अंदर कौन सी बड़ी क्वालिफिकेशन है, हम क्या कम है, यही संस्कार उनके ऊपर हो रहा है। अब ऐसे वायुमंडल में हमारा भी व्यवहार, हमारा भी विचार और भावना का ढंग यदि नेताजी का ही रहा तो क्या हम कोई बड़ा काम कर सकेंगे? आज के नेताजियों का व्यवहार जरा देखिए, और जिनके आदर्शवादी जीवन मूल्य थे, इस तरह के लोगों का व्यवहार कैसा था, इसका थोड़ा सा दर्शन लीजिए। दिखेगा कि व्यवहार बिल्कुल अलग ढंग का है, जो आज के नेतागिरी से मेल नहीं खाता। अभी जब चुनाव वगैरह की चर्चा हुई, जगह जगह से रिपोर्ट आई, तो लोगों ने कहा कि साहब इस चुनाव में बड़ा एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया, जो पहले तो लोग छोटा छोटा काम करते थे, नाम लिखना वोटर्स का, और फिर चिट्ठियां बांटना, दरिया उठाना, कुर्सियां उठाना। इस समय तो ऐसा था कि जो कार्यकर्ता के नाते आता है वो नेता बन जाता है, और मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, जनरल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन का काम हर एक अपने पास लेता है। जो प्रत्यक्ष फील्ड वर्क है, छोटा काम है, वह कौन करेगा, इसकी फिक्र नहीं। तो हमने कहा भाई आपने जो बीज बोए है उसी का यह फल है। लेकिन आदर्शवादी जीवन मूल्य रखने वाले लोगों का व्यवहार, उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से हमारे सामने किस तरह आता है। मैंने जो तिलक जी का उदाहरण दिया, एक बिल्कुल छोटी घटना जो शायद बाकी लोग आंखों से ओझल करें, उनके जीवन में ऐसी बताई जाती है कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस थी, अब महाराष्ट्र और दक्षिण से भी उसमें प्रतिनिधि गए थे। चर्चा चल रही थी, रात में बड़े देरी से सो गए, लेकिन सुबह जब टट्टी जाने के लिए लोग निकले तो उन्होंने देखा कि तिलक जी स्वयं जहां बड़े बड़े बर्तन रखे थे पानी गर्म करने के, वहां चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो दक्षिण से आए हैं उनको उत्तर की या जो उत्तर का जो जाड़ा है वो बर्दाश्त नहीं होता, नहा धोकर जल्दी बैठक के लिए जब पहुंचना है तो मैं पानी गर्म कर रहा हूं। अब वास्तव में आज का नेताजी वहां यदि उनके स्थान पर होता तो वो किसी को आदेश दे देता कि बेटा जरा वो काम कर लो, किंतु इन्होंने किसी को जगाया नहीं, स्वयं पानी गर्म करने का काम करने लगे। गांधी जी के जीवन में आता है कि उनका एक भक्त था, बड़ा शास्त्री पंडित था, उसको लेप्रसी हो गई, तो गांधी जी ने उसको अपने पास बुलाया आश्रम में, और साहित्य भी पढ़ना शुरू किया। तो उसमें एक आया कि ऑलिव ऑयल की मसाज करने से लेप्रसी कुछ कम हो सकती है। अब मसाज करने का काम गांधी जी ने स्वयं अपने पास लिया, और अल्टरनेट डे पर तीसरे दिन उसकी मसाज वो करते थे। उस समय सत्ता के हस्तांतरण की चर्चा शुरू हुई थी, और दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ चर्चा करने के लिए गांधी जी आए थे, और ये मसाज का जो दिन था उसके पिछले दिन इन्होंने अपना ट्रेन का रिजर्वेशन वगैरह भी इनका था, लेकिन ट्रेन के समय तक ये चर्चा पूरी होगी नहीं होगी इसमें शक था। अब वास्तव में आज के जीवन मूल्य के दृष्टि से सत्ता का हस्तांतरण यह तो सबसे बड़ी घटना है। सब कुछ तो सत्ता के लिए ही करना है, लेकिन यह सत्ता के हस्तांतरण की चर्चा चलते हुए भी गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि भाई आज इतने इतने बजे तक जो मेरे गाड़ी का टाइम है अपनी वार्ता समाप्त हुई तो अच्छा है, नहीं तो इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। बोले क्यों? तो इन्होंने कहा कि मुझे वर्धा जाना है और ऐसा ऐसा काम मेरा है। अब क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आज के नेताजी इस तरह का लॉर्ड माउंटबेटन को कहेंगे? यहां से टेलीग्राम दे देते, टेलीफोन कर देते कि भाई वो मसाज का काम है, इतने आश्रम में लोग पड़े हुए हैं, कोई भी मसाज का काम कर दे। लेकिन स्वयं गांधी वर्धा गए। तो इस तरह का एक स्वाभाविक रूप से, माने ये तो नहीं था कि ये बात अखबार में आने वाली थी और उनकी फोटो आने वाली थी इसलिए उन्होंने किया, ऐसा नहीं। स्वाभाविक प्रवृत्ति के जो छोटा भी काम है वह मेरा है, मैंने करना है, स्वाभाविक प्रवृत्ति। सब लोग जानते हैं कि जो आज हिंदुस्तान का सबसे प्रबल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका जब काम शुरू हुआ, पहली शाखा शुरू हुई, तो ग्राउंड भी अच्छा नहीं मिला, उबड़ खाबड़ था, उसको ठीक करना था, उसको सफा करना था। लोग भी वहां आकर अपने नैमित्तिक विधि सारे निपटते थे, तो ग्राउंड साफ करना यह हर दिन का कार्यक्रम था। हाथ में झाड़ू लेकर परम पूजनीय डॉक्टर जी स्वयं बाकी लोगों के साथ वो काम करते थे, माने स्वयं काम करते थे और बाकी लोगों को अपने साथ वो काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरणा देते थे। अब वो भी सोच सकते थे कि मैं तो नेता हूं, ये झाड़ू लगाने का काम ये मेरा काम थोड़ा ही है, और भी कोई यह काम कर सकता है, यह विचार उनके मन में नहीं आया। मैंने जो प्रारंभ में जीवन मूल्य के नाते मोहम्मद साहब का नाम लिया था, उनके जीवन में आता है कि मदीना में पहली बार बड़ी मस्जिद बनाने का जब उपक्रम शुरू हुआ तो उस समय अपने अन्य साथियों के साथ और पत्थर आदि उठाकर अपने सर पर ले जाने का काम स्वयं मोहम्मद साहब करते थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं नेता हूं, बाकी लोग काम करें, मैं जनरल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन का काम करूंगा। यदि वो करते तो किसी के मन में कोई किलमिश आ जाता, ऐसी बात नहीं, लोग उसको शायद स्वाभाविक ही मानते। लेकिन स्वयं अपने सर पर बोझ उठाने का काम अन्य लोगों के साथ उन्होंने किया, ऐसा दिखता है। जीसस क्राइस्ट के जीवन में अंतिम जीवन की जो घटनाएं हैं उसमें यह आता है कि वो किसी के यहां अपने सब शिष्यों के साथ भोजन के लिए गए। यह जो उनका लास्ट सफर है यह बहुत प्रसिद्ध है। अब वह जाकर भोजन के लिए बैठे तो एक बात उनके ख्याल में आई, लीडर के पास पहुंचने की जरा होड़ थी कि भोजन के समय लीडर के पास मैं कौन बैठूंगा, यह होड़ थी। और इसके लिए जैसे सार्वजनिक जीवन में होता है वैसा दृश्य वहां भी उपस्थित हुआ, माने एल्बोइंग आउट, एक दूसरे को खदेड़ कर और सामने घुसना। यह जब देखा तो उनको दुख हुआ और उन्होंने कहा कि भाई जरा हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, और जिसका मकान था उसको कहा कि पानी की बकेट ले आइए, टॉवेल ले आइए। और फिर अपने एक एक शिष्य को बुलाया, पानी से उसके पैर स्वयं अपने हाथ से धोए, टॉवेल से अपने हाथ से हर एक के पैर पोछे, और फिर कहा कि अब हम भोजन के लिए बैठेंगे। और फिर कहा कि यह मैंने क्यों किया इसका आपको पता है क्या? मैंने इसलिए किया है कि आप सबक सीख सके कि जिस तरह का प्रेम मैं आपके साथ करता हूं, जिस तरह का व्यवहार मैं आपके साथ करता हूं, उसी तरह का प्रेम और व्यवहार आप आपस में रखें, ताकि दुनिया पहचान सके कि आप मेरे हो। तो हम सोचे कि किस तरह का व्यवहार स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के द्वारा होता है जिनके आदर्शवादी कुछ जीवन मूल्य। परम पूजनीय गुरु जी का तो मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव ऐसा है कि जो बताने में मुझे शर्म मालूम होती है। मैं उनके यहाँ रहता था और लॉ कॉलेज में जाता था। आदतें तो बिगड़ गई थी कॉलेज लाइफ में। तो सुबह का कॉलेज था तो नीचे टट्टी जाने के लिए आना और फिर इधर ही चाय लेकर सीधे कॉलेज चले जाना। बाद में याद आती थी कि अरे अपना बिस्तर तो वैसे ही रहा, लेकिन आज वापिस आता था तो बिस्तर तो अपने स्थान पर रहता था। तो सोचा कि ये बिस्तर गोल करने का काम कौन करता है, तो हमने हमारे साथ जो सोता था उसको कहा कि भाई माफ करना, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूं, हर दिन मेरा बिस्तर तुमको ये करना पड़ता है। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो कभी तुम्हारा बिस्तर उठाया नहीं। तो फिर मुझे डर हुआ और एक दिन कॉलेज में न जाते हुए मैं पीछे से उधर टेरेस पर चला गया, देखता रहा कि मेरे बिस्तर का होता क्या है। तो उधर से परम पूजनीय गुरु जी आए, स्वयं वह बिस्तर ये करके और नीचे चले गए और उलाना तक नहीं दिया। काम भी करते, उलाना तक नहीं दिया कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा है। हमारे इतिहास में और नेतृत्व का सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का बताया जाता है। पांडवों को चक्रवर्ती बनाने का काम भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हुआ था। लेकिन जिस समय पांडवों के यहां राजस्वीय यज्ञ हुआ, अब इतना बड़ा समारोह था, उसमें तरह तरह के डिपार्टमेंट संभालने की आवश्यकता थी। पांडवों ने सबको पूछा भाई तुम कौन सा डिपार्टमेंट देखेंगे, हर एक ने अपने अपने इच्छा का डिपार्टमेंट ले लिया। कृष्ण को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब लोगों का हर समय भोजन होने के पश्चात जो झूठी पत्तले रहती है, ये झूठी पत्तले उठाने का काम मैं करूंगा। माने चक्रवर्तियों का नेतृत्व करने वाला पुरुष झूठी पत्तल उठाने का काम स्वयं होकर मांग लेता है। इस तरह का एक आदर्शवादी व्यवहार हम अपने भी इतिहास में देखते हैं। तो दो तरह के जीवन मूल्य है और इसमें से हमने यह देखना है कि जो एक बड़ा विस्तृत ऐसा ध्येय हमने अपने सामने रखा है उसको यदि प्राप्त करना है, राष्ट्र निर्माण करना है, तो सामूहिक नेतृत्व के नाते हम में से हर एक का जीवन मूल्य क्या हो, किस तरह के नेतृत्व की अपेक्षा बड़े काम में हुआ करती है, भारतीय मजदूर संघ के जैसे, इसका बारीकी से विचार हम में से हर एक ने करना चाहिए। जो केवल पोजीशन के कारण बड़प्पन मिलता है वह सही बड़प्पन नहीं है। सही बड़प्पन जो है वह पोजीशन पर अवलंबित नहीं है, वह इंट्रिंसिक वर्थ, अंतर्गत आपकी योग्यता है। और सही बड़प्पन कैसा प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में एक बड़ा छोटा सा सूत्र अपने यहां जो विष्णु सहस्र नाम है इसमें एक बड़ा छोटा सा सूत्र पाया जाता है। विष्णु के उसमें हजार नाम दिए लेकिन एक एक विशेषण गुणवाचक। उसमें कहा गया अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोक धृत। त्रिलोक धृत यह भगवान के लिए है कि तीनों लोगों की जो धारणा करते हैं, लोकस्वामी यानी जो लोक नेतृत्व करते हैं। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचते हैं, तो कहा अमानी मानदो मान्यो। अमानी जो स्वयं अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, मानदो जो दूसरों को मान देता है, स्वयं अपने के लिए सम्मान लेने की अपेक्षा नहीं, दूसरों का सम्मान करता है। और फिर तीसरा शब्द आता है मान्य, इसके कारण जो सर्वमान्य हो जाता है। सर्वमान्य होने की जो प्रक्रिया है वो इस तरह की बताई है कि अमानी, अपने लिए मान की अपेक्षा नहीं, मान दो दूसरों को सम्मानित कर रहा है और इसलिए सर्वमान्य हो रहा है। अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक धोती, यह प्रक्रिया बताई। वास्तव में जो सही लोक नेतृत्व है वह इसी प्रक्रिया में से आता है। जो स्वयं अपने को भूल जाता है, अपने बड़प्पन, अपना यश, अपना गरिमा, यह विचार जिसके मन में आता ही नहीं, तो आदर्श का यश, ध्येय की प्राप्ति, यही एक ही विचार, ध्येय के साथ इतना एकात्म है कि जिसमें फिर अहम नहीं, जो अहम को भूल गया है। क्योंकि जैसे ईसा ने कहा है कि हृदय के सिंहासन पर भगवान और शैतान दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते, वैसे आदर्श और अहम दोनों एक साथ हृदय के सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। अहम जितना बड़ा होगा उतना आदर्शवाद छोटा होगा, आदर्शवाद जितना बड़ा होगा उतना अहम छोटा होगा। जैसे एक ही सर्कल है, उसमें दो कलर दिए हैं, एक लाल है एक हरा है, सर्कल कांस्टेंट है, तो सर्कल यदि कांस्टेंट रहा तो हरे कलर का दायरा बढ़ेगा तो लाल का दायरा छोटा होगा, लाल का दायरा बढ़ेगा तो हरे का छोटा होगा। वैसे हमारे हृदय का, मन का जो सर्कल है वह कांस्टेंट है, उसमें दो कलर है, एक अहम है एक आदर्शवाद है। आदर्शवाद का कलर का दायरा बढ़ेगा तो अहम का छोटा होगा, अहम का दायरा बढ़ेगा तो आदर्शवाद का छोटा होगा। और जिसका आदर्शवाद का ही दायरा संपूर्ण सर्कल बन गया है, ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में सही लोक नेतृत्व कर सकता है, जिसके माध्यम से कुछ बड़ा काम हो सकता है। एक बार धर्मयुग ने अलग अलग नेताओं की हस्ताक्षर इकट्ठा किए और हस्ताक्षर के साथ फिर कुछ मैसेज भी आता है। सबसे छोटा मैसेज परम पूजनीय गुरु जी का था, तीन ही शब्द उसमें थे, मैं नहीं तू ही। जहां मैं का संपूर्ण लोप है, केवल ध्येय, केवल आदर्श, यही संपूर्ण हृदय को, मन को, आत्मा को व्याप्त करता है, वही सही लोक नेतृत्व प्राप्त हो सकता है। हृदय में दो बातें नहीं रह सकती। जयपुर में मैंने आपको एक ये बताया था कि मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं यह भावना थी तब भगवान के दर्शन नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो मैं अपने को भूल गया हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। यह जो प्रेम की गली है वह बहुत सांकरी है, उसमें एट ए टाइम दो नहीं रह सकते। इस तरह से जो स्वयं अपने को भूल जाता है, और इसके कारण फिर नेतागिरी की भावना भी नहीं, मैं कोई हूं यह बात नहीं, इसके कारण एक विनम्रता है, और इतनी विनम्रता है, सबसे मैं नीचा हूं, सबसे मैं छोटा हूं यह भावना है, सबकी सेवा करना यह स्वभाव बन जाता है, उस अवस्था में से सही लोक नेतृत्व पैदा होता है। वही व्यक्ति 10-100 हजार लोगों को इकट्ठा कर सकता है, सबको प्रेरणा दे सकता है, सर्वसंग्राहक बन सकता है। सबसे सर्वसंग्राहक कौन बन सकता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण निसर्ग ने हमारे सामने रखा है। निसर्ग भी हमारा एक शिक्षक है, निसर्ग ने हमारे सामने वो उदाहरण रखा है कि ज्यादा से ज्यादा सर्वसंग्राहक, ज्यादा से ज्यादा सर्वसमावेशक कैसे बन सकता है। निसर्ग में इस धरती पर जमीन कम है, पानी ज्यादा है, जमीन कम है पानी ज्यादा है। किसी ने मजाक में कहा कि इसको पृथ्वी कहना गलत है, पानी ही कहना चाहिए था, पानी ज्यादा है। और ये जो पानी है वो अलग अलग लेवल से निकलता है,
ये तो सबने देखा है, कोई नदी का प्रवाह पूना में बहता होगा, उससे अधिक ऊंचाई पर सह्याद्री से निकलने वाला कोई पानी का प्रवाह होगा, उससे भी ऊपर हिमालय से निकलने वाला कोई प्रवाह होगा, उसमें भी कुछ प्रवाह होगा जो माउंट एवरेस्ट से निकल रहा है। तो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या है? तो पूना में जो जल प्रवाह बह रहा है उससे सह्याद्री से निकलने वाला जल प्रवाह अधिक ऊंचाई पर है, हायर पोजिशन, उससे भी अधिक ऊंचाई पर हिमालय के मूलों से निकला हुआ है, और उससे भी अधिक पोजीशन उसकी होगी जो जल प्रवाह है उसकी जो ऊंची ऐसी कोई चोटी होगी वहां से निकला हुआ है। अलग अलग पोजीशन से अलग अलग ऊंचाइयों से जल प्रवाह निकलते हैं। अब हो सकता है कि जब वो ऊंचाई पर है तब सोचते भी होंगे कि अरे ये पुना से निकलने वाला जल प्रवाह क्या, यह तो छोटा है, मेरे से नीचे है, मैं ऊपर से निकल रहा हूं। तो ऊपर की पोजीशन है उनकी, जो बड़े पहाड़ियों के चोटी पर से निकलते हैं उनकी पोजीशन ऊंची, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अंत में क्या होता है, पहाड़ की चोटी पर से निकला हुआ भी जल प्रवाह वहां नहीं रहता। निसर्ग ने यह नियम बनाया कि वह नीचे आता है, और वह नीचे आकर नीचे जो गंगा जमुना बहती है उसमें मिल जाता है, और गंगा जमुना भी जो बहती है वह आखिर में सारे जल प्रवाह दुनिया के कहां मिलते हैं, महासागर में मिलते हैं, जो महासागर सबसे नीचा है। सबसे नीचा होने का मापदंड ही महासागर को माना गया है। यहां तक कि जब शास्त्रज्ञ किसी भी स्थान की ऊंचाई कितनी है, छोटी ऊंचाई है या बड़ी ऊंचाई है, इसका हिसाब करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, कहते हैं कि समुद्र के सरफेस से 4000 फुट ऊपर, समुद्र के सरफेस से 30000 फुट ऊपर, माने सबसे नीचा कोई होगा तो वो महासागर माना जाता है। लेकिन ऐसा दिखता है कि बड़े बड़े ऊंचाई पर निर्माण हुए सारे जल प्रवाह भी आखिर शरण किसकी गोद में आते हैं, तो महासागर की गोद में आते हैं। और इसका कारण यह है कि वह सबसे नीचा स्थान रखता है, अपने को सबसे छोटा मानता है, उदार है, सर्वसमावेशक है, विशाल है, बहुत गहराई रखता है, इसीलिए इतना पानी उसमें समा सकता है। इतनी गहराई में होती तो इतना पानी समाना संभव नहीं। तो इस तरह से महासागर यह सबसे नीचा, और इसी कारण दुनिया भर के सारे जल प्रवाह उसी के अंदर आखिर अंततोगत का शरण लेते हैं, यह एक अच्छा उदाहरण निसर्ग ने हमारे सामने रखा है। यह लोक नेतृत्व है। इस तरह के अपने मन की धारणा रही तो जिस टाइप का काम भारतीय मजदूर संघ करना चाहता है उस टाइप का काम हो सकता है। आज जो सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक जीवन में नेताजी की भावना है उससे भी काम होगा, जिस ढंग का हुआ है पिछले 2.5 साल में उस ढंग का काम होगा। लेकिन जिन्होंने निर्माण करना है उनके लिए अलग जीवन मूल्यों की आवश्यकता है, उसके कारण स्वाभाविक रूप से निर्माण होने वाले अलग व्यवहार की आवश्यकता है, और यह बातें हम ख्याल में यदि रखते हैं उसके मुताबिक हम अपने जीवन को ढालते हैं, अपने मन को हृदय को ढालते हैं, तो उसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपना कार्यकर्ताओं का समूह बढ़ सकेगा, मास्टरमाइंड ग्रुप हम जगह जगह तैयार कर सकेंगे, मजदूरों में भी हमारा नेतृत्व स्वीकार करने वालों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती रहेगी। मजदूर अनपढ़ है तो भी, जैसे बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता तो भी, भगवान ने ही बच्चे के मन में इतनी अकल दी है कि माँ कौन है और माँ कौन नहीं है वो स्वाभाविक रूप से समझ सकता है। वैसे वास्तव में अपना नेतृत्व करने वाले कौन है और कौन केवल दिखावा उपस्थित करने वाले हैं, अनपढ़ मजदूर भी अंततोगत समझेगा। ज्यादा देर तक किसी को गुमराह करना यह संभव नहीं है, थोड़े समय के लिए थोड़े लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बाकी बातें स्वाभाविक रूप से होगी। हमारे जीवन मूल्य और उसके कारण हमारा मन हृदय आत्मा यदि ठीक ढंग का रहा तो बाकी सारी चीजें स्वाभाविक रूप से उपस्थित होगी। इस दृष्टि से सामूहिक नेतृत्व करने वाले हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, हम लोगों ने अपने अपने स्थान पर अपना अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त होगा।